أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. لا یغفر, میں لا پہ اتنا زور اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ کے جب بھی ہم ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کوئی بھی خیال, تو یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے, وہ تو بخشنے والا ہے. کیا ایسی بات ہو گئی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اللہ نہیں بخشے گا, نہیں بخشے گا. کس کو نہیں بخشے گا؟ کس سے اللہ اتنا ناراض ہے؟ کیا کام ایسا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش نہیں ہے؟ اَن یُشْرَکَ بِہِ, کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور بخش دے گا اس کے علاوہ کوئی بھی جس کو بھی وہ چاہتا ہوگا, جو بھی عمل ہوگا یا جس کے لیے بھی وہ چاہتا ہوگا, وہ بخشش کا پروانہ دے سکتا ہے کہ میں نے اس کو بخش دیا. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں بخشا. ٹھیک ہے, تو بہت ہی یہ اہم بات ہے کہ انسان اس بات کو سیریس لے کہ شرک کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو, وہ غفور الرحیم ذات نہیں بخشے گی اس کو, جس نے کہا کہ میرے پاس پہاڑوں کے برابر اور آسمان تک بھی تمہارے گناہ آ جائیں تب بھی میں ان کو بخش دوں گا. لیکن اسی حدیث میں آتا ہے لیکن تب کہ میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو, تب میں اس بندے کو بخش دوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اتنا کبیر گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہوں میں بھی سب سے ٹاپ پہ جو پہلا گناہ آتا ہے وہ شرک ہے. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. اسی کا الٹ ہے توحید, توحید اس کا الٹ ہے. توحید کو سمجھیں گے تو شرک کی سمجھ آ جائے گی. توحید کی تین قسمیں ہیں, یہ آپ لکھ لیں, تین قسمیں ہیں توحید کی. نمبر ون توحید ربوبیت, نمبر ٹو توحید اسماء و صفات, نمبر تھری توحید الوہیت. توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننا, اس میں اس کو ایک ماننا کہ وہ مالک ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ مجھے سروائیول دینے والا ہے, میری ذات قائم اس کے ذریعے ہے, یہ سب, اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. یہ سب یہ توحید ربوبیت میں آتا ہے. توحید اسماء و صفات میں کیا آتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سارے کام کرنے والا ہے, جو بھی افعال ہو رہے ہیں دنیا میں, وہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں, کوئی اور نہیں کرتا. تو اسماء و صفات جتنی بھی اللہ کی ہیں ان کو ماننا. اور توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت اصل میں یہ ہے توحید فی العبادت. یاد رکھیے ایک بات, ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے. قرآن آپ کا کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا تو کہتے ہیں اللہ نے, تو پھر وہ کیسے مشرک تھے؟ مشرکین مکہ, ان کی بات کی جا رہی ہے. جب وہ کہا گیا, جب وہ بحری جہازوں میں جاتے ہیں سمندروں کے اندر اور طوفان میں ان کے جہاز پھنس جاتے ہیں, تو پھر ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں, تو کیا وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے؟ حج کرتے تھے وہ اللہ کے گھر کا, لبیک اللہم لبیک بھی کہتے تھے. تو کیا بات تھی پھر, کیا کس چیز کے خلاف اسلام آیا کہ یہ شرک ہے اور یہ نہیں کرو؟ دیکھیں وہ اللہ کو مالک مانتے تھے, خالق مانتے تھے, اس کی یہ مانتے تھے کہ اللہ کام کر رہا ہے سارے. لیکن کہاں پہ گڑبڑ کہاں تھی؟ پرابلم پھر کیا تھا؟ پرابلم یہ تھی, اللہ کے وجود کو ماننے میں پرابلم نہیں تھی. پرابلم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس کے بعد یہ تو ہم نے مان لیا, مگر اب عبادت کے لائق یہ بھی ہیں, یہ جو ہمارے جو بھی نیک لوگ دنیا سے گئے ہوئے, یا کوئی فرشتے ہیں یا کوئی ہیں. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ لغت میں عبادت کا مطلب ہے الاطاعت بالتذلل, اطاعت تذلل کے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی, انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل کر کے, حقیر کر کے, نیچا کر کے کسی کی عبادت کرنا, کسی کی اطاعت کرنا, اس کا حکم ماننا, یہ ہوتی ہے عبادت. मोहब्बत के साथ, ये होती है इबादत। अब हुक्म चल को माने ना माने, उसको समझ लिया कि हम इबादत ही कर रहे हैं, लेकिन इबादत को करने की कहीं किस किस तरह से आप इसका इजहार करेंगे, ये तो एक बात हो गई ना दिमाग में। आप इजहार कैसे करते हैं? दुआएं, सजदे, नमाजें, कुर्बानियां, मन्नतें, मुरादें, भरोसे, इस सब इस तरीके से आप इबादत को मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसका इजहार करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये रिचुअल्स रखे हैं, ये मरासिम में इबादत है। ठीक है, अब क्या होता था, दुआएं उनकी किसी और के सामने, सजदे उनके किसी और के सामने, ये यहां पे ही तो शिर्क आ जाता है, यहीं पे तो है कि इबादत में शिर्क करते हैं। याद रखें, दुनिया में कोई मुशरिक ऐसा नहीं है, आप हिंदुओं को भी पूछ लें, ऊपर वाला किसी को मानते हैं ना, कहते हैं ऊपर वाला वो एक ही है, तो वो ये थोड़ी कहते हैं कोई है ही नहीं। इमरान बिन हुसैन जो जब जिस वक्त मुशरिक थे, इस्लाम लाने से पहले की बात है, अफसर सलम ने पूछा कि कितने खुदाओं को मानते, बोले 7 को मानता हूं, 6 छोटे हैं तो एक बड़ा है, तो बड़े को तो वो भी मानते थे। तो असल बात है कि शिर्क उलूहियत में करते थे, इबादत में करते थे, इताअत में करते थे, समझ आई? जबकि इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह के अलावा किसी के लायक नहीं है, किसी की ये शान नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। समझ आ गई बात? और आज देखें, आज उम्मते मुस्लिमा का हाल क्या है, हाल ये है इनका कि आप अपने मुल्कों में देखेंगे जगह जगह पे कब्रें बनाई गई हैं, और फिर उन कब्रों को बाकायदा पूजा जाता है, उनकी इबादत की जाती है। आप कहेंगे इबादत तो नहीं करते वो, इबादत तो अलग ही करते, इबादत क्या कैसे नहीं करते, जबकि वो दुआएं उनसे मांगते हैं, सजदे बाकायदा कब्रों पे किए जाते हैं उनकी तरफ मुंह करके, और फिर उसके बाद कई खड़े होके स्पीकरों पे कहते हैं कि जी देखें जी क्यों ना हम इनसे मांगे, देखो जी पानी में जो डूब रहा होता है वो भी तो मदद मांगता है किसी से, तो वो मदद मांगता है तो हम भी, अगर हमारी कोई मुसीबत है तो हम इनको कह रहे हैं तो ये भी आगे अल्लाह को कह देंगे, तो हम तो इसलिए इनसे कह रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, ए इब्राहिम आप हमारी ये बात अल्लाह के सामने कर दें, आप हमारी ये काम हमारा करवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखें, 70 सहाबा को जब शहीद कर दिया गया था धोखे के साथ ले जाके, तो उन्होंने क्या दुआ की थी, या अल्लाह हमारे हाल की खबर अपने नबी को दे देना, ये नहीं उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमें यहाँ पे शहीद किया जा रहा था, तो वहीं से कह देते हो। आज शिर्क कितना हो रहा है कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम को समझा जाता है कि हम उनको पुकारें, उनकी कब्रों पे जाके उनको पुकारा जाता है, कब्र पे जाके खड़े होके वहां से उनसे दुआएं मांगी जाती है, जबकि सहाबा का तरीका देखें, हमने तो देखना है नहीं कि सहाबा कराम ने क्या इसी तरह किया था। हजरत उमर का जब आता है कि बारिश नहीं हुई थी, बुखारी में हदीस है कि तो क्या फरमाता, अब्बास को लेकर गए थे बारिश की दुआ करने के लिए, और क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह जिस वक्त तेरा नबी जिंदा था तो उस वक्त हम उनको वसीले के तौर पे पेश करते थे बारिश के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे ना कि आप दुआ करें बारिश के, आप वो नहीं है हम में तो हम आपके चचा को लेकर आए, क्यों वो जाके कब्र पे क्यों नहीं कह देते थे कि या रसूल्ला आप हमारे लिए बारिश की दुआ कर दें अल्लाह से, हम हमारे ऊपर बारिश हो जाए, क्यों नहीं उन्होंने कहा, और सोचे। अल्लाह अकबर, एक आदमी आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा था जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी इतना नापसंद किया था कि फरमाया तुम मुझे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हो, ये कहो कि सिर्फ ये कहो जो अल्लाह चाहे, बस माशा अल्लाह। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को सवारी के पीछे बिठाया हुआ था तो उनको बहुत सारी नसीहतें की थी, तो आखिर में फरमाया जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करो, जब तुम्हें मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। तो क्या सहाबा को ये मतलब नहीं पता था कि वो कोई डूब रहा हो पानी में तो वो किसी की मदद चाहे, तो हम तो इसलिए ही पुकारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद, या फलां मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी मदद, या गौसे आदम मदद, हम तो किन किन से मददें मांगते हैं और नमाज में क्या कहते हैं, या का नस्ताइन, झूठ बोलते हो, या का नस्ताइन, अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, झूठ। कि जब तुम जिंदगी में हमेशा कभी या अली मदद, कभी या रसूल अल्लाह मदद, या मोहम्मद मदद, या फलां मदद, जब तुम जिंदगी में ये कहते तो या का नस्ताइन क्या क्या इसका मतलब रह गया? क्या ये झूठ नहीं है फिर? हाँ, कोई जिंदा है तो आप जरूर उसको कहें। अब क्या हम कह नहीं सकते भाई जाओ बेटे पानी लेकर आओ, तो क्या हम मदद नहीं मांग रहे? हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अपने हवारियों से कहा था कि मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा अल्लाह के यहाँ मददगार है अल्लाह के कामों में, तो उन्होंने नहीं मदद मांगी थी, मांगी थी और मांग सकते हैं इस तरह, मगर जिंदों से कहा था। गैब में किसी को नहीं पुकारा था उन्होंने, नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सब नबियों को पता था कि एक आखिरी नबी है, उनका ये नाम होगा, तो वो गैब से पुकारते रहते। और हमने आज बना लिया कि आदम अलैहि सलाम की जो बख्शिश हुई थी ना, वो भी इसी तरह हुई थी, उन्होंने देखा था ऊपर तो वहां पे लिखा हुआ था मोहम्मद, तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं इनके उससे मांगता हूँ। ये कहाँ से घड़ी भी हदीस है, ये कोई हदीस नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई हमें, ये नहीं कहा मुझे पुकार लिया करना जिस वक्त मैं चला जाऊंगा, देखो तुम मेरी कब्र पे, कह सकते थे ना, हाँ ये जरूर हमें बताया। देखिए याद रखें, कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कोई बात ऐसी नहीं जो तुम्हारी भलाई की और मैंने ना तुम्हें बताई हो। हाँ ये जरूर फरमाया, देखो दुरूद पढ़ा करना, अव्वल आखिर दुरूद पढ़ा करना, दुरूद पढ़ोगे तो दुआएं कबूल होंगी, तो ये भी फरमा देते थे कि मेरी कब्र पे आओगे तो दुआएं कबूल होंगी, क्यों नहीं कहा? और अभी मुझे किसी ने बताया कि वो दरियाए रावी जब पीछे हटाए तो वहां पे एक जनाब कब्र थी नीचे, अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम कैसे लोग हैं, कहते नीचे से कब्र निकल आई, तो वहां पे उन्होंने चादर डाल दी और वहां पे अब वो बैठ गए हैं और वहां पे सारी मन्नतें मुरादें शुरू कर दी। अब खुदा जाने किसकी कब्र, और सबसे पहली बात ये कि पानी के नीचे कब्र रह कैसे गई, कच्ची कब्र तो रह ही नहीं सकती पानी के नीचे, तो इतने अरसे से पानी के नीचे थी, अब वो पानी पीछे हटा तो कब्र एक्सपोज हो गई और बस लोगों को मौका मिल गया, वो वहां पर बैठ गए। पर वो कोई बद की कमर है, किसकी कब्र है, पता नहीं कौन है इसके अंदर, उसको अजाब हो रहा है कि पता भी नहीं है, मगर कब्र मिल गई ना, तो बस हमारा ये हाल आज हो चुका है कि हम कब्रों को पूजने वाले बन गए, ढूंढते हैं कहीं को कब्र मिल जाए। और फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुवाहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका उशरिका बिका शैअन अना आलमु व अस्तग़फिरुका मा लम आलम। तो आप देखें कि शिर्क इतनी कबीर चीज है, यहाँ पे कहा गया शिर्क को अल्लाह नहीं माफ करेगा, तो अल्लाह नहीं बख्शेगा शिर्क को, क्या इसका ये मतलब है कि जिसने कभी शिर्क कर लिया तो अब उसके बाद बस खत्म उसका? नहीं, बस ये मतलब है जिसने कभी शिर्क किया हो और उस शिर्क में ही करते करते दुनिया से चला गया ना, उसकी नहीं कभी बख्शिश हो सकती। हाँ, जो अभी जिंदा है, शिर्क करता था, कभी किया था, आज समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन माफी मांग ले दुनिया से जाने से पहले।